कृष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। आज बड़े खुशी की बात है कि विदेशों में बहुत दिनों से घूम रहा हूं, किंतु मुझे हिंदी बोलने का अवसर नहीं मिला। बहुत दिनों के बाद में आज मुझे हिंदी बोलने का अवसर मिला और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि हॉलैंड में रहते हुए भी आप इतने हिंदू लोग यहां पर उपस्थित हैं और सभी लोग हिंदी जानते हैं। यह आश्चर्य की बात है। विदेशों में इतना हमने हिंदुओं को एकत्रित हुए मैंने नहीं देखा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और विशेष करके मैं आज हिंदी बोल रहा हूं। मैं भारत से आया हूं, भारत में भी मैं मथुरा और वृंदावन से आया हूं, जो भारत की संस्कृति का ये जीवन है, प्राण है। यदि भारतवर्ष में से मथुरा वृंदावन को निकाल दिया जाए तो वो प्राणहीन शरीर के समान हो जाएगा। हमारी भाषा को आप लोग सब समझ रहे हैं, सुरिनाम वाले लोग आ रही है समझ में थोड़ा थोड़ा कि नहीं? बहुत ठीक है, बड़े खुशी की बात है। तो भारत माने होता है भारत, तमसा मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश में चलो अंधकार में मत जाओ। ये भारत की संस्कृति, इसलिए इसका नाम हुआ भा माने प्रकाश। उस प्रकाश में रत है, अर्थात प्रकाश में वो सब समय तल्लीन है, इसलिए इसका नाम भारत है। तो हिंदू उसका नाम क्यों हुआ? हिमालय उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बिंदु सरोवर, अंत में है दक्षिण में, भारत के अंत में, उन दोनों के बीच में हिमालय का ही आ इंदु सरोवर का बिंदु सरोवर का इंदु, तो इन दोनों के बीच बीच में जो जनता रहती है उसको हम लोग हिंदू कहते हैं। जो सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन किसको कहते हैं इसको समझने की चेष्टा करेंगे। यह विचार भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं विश्व में है। आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आप लोग भारत से संबंधित हैं, आपके पूर्वज लोग भारत के ही थे। कुछ धन की लालसा से सुरिनाम में ये लोग गए या विदेशों में सर्वत्र गए हैं, किंतु बड़े खुशी की बात है कि अभी भी अपनी संस्कृति को कुछ न किसी रूप में रखे हुए हैं आप लोग। बड़े खुशी की बात है, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है जो अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। सनातन किसको कहते हैं पहले समझना चाहिए, जो सनातन है किसको। कागज छिपा हाँ। सनातन किसको कहते हैं समझना चाहिए। जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो एटर्नल है, नित्य है। हम संसार में जो कुछ देखते हैं वो स्थायी नहीं है। अभी जन्म लिया, कुछ बड़े प्रौढ़ हुए, युवक हुए, और कुछ दिनों के बाद में बूढ़े हो गए और फिर मर गए। जो कुछ इस आंखों से देखते हैं, हम नेत्रों से देखते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है। अभी घर बनाया, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष के बाद में ये गिर जाएगा। पेड़ पौधे भी है, इनकी आयु है। यहां तक कि पहाड़ भी हैं, उनकी भी आयु है। इसलिए ये सनातन नहीं है। सनातन कौन है? विश्व ब्रह्मांड का रचने वाला, जो विश्व ब्रह्मांड की रचना की, जिसने हमारे शरीर की रचना की, वो सनातन है। और दूसरा कौन सनातन है? इस शरीर के अंदर में जो है उसका अंश, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता कहती है, हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसके अंदर में हम आत्मा, ये शरीर मैं नहीं हूं, इसको गांठ बांध रखेंगे। वी आर नॉट फिजिकल बॉडी, हम इसके अंदर में आत्मा है। आत्मा को देखा नहीं, किंतु आत्मा जिस दिन में ये निकल जाएगी, बैठ, ओह यू कैन कम हियर, देयर इज सो मच प्लेस, कम ऑन। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, दूसरे दिन ये सड़गल जाएगी, ये रक्त पैखाना टट्टी पेशाब का ये घर है ना? थोड़ा सा पेट फाड़ करके दिखला दिया जाए तो है इसमें क्या, टट्टी भरी पड़ी है, पैखाना भरा पड़ा है, रक्त भरा पड़ा है। इसलिए आत्मा निकलते हैं, इसको जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। इसलिए ये पहले समझो कि हम लोग यह शरीर नहीं है। शरीर के अंदर में जिसके रहने से कान सुनता है, जिसके शरीर के भीतर में रहने से वह चलता है, बोलता है, फिरता है, सूंघता है, उसको होश है, उसको दिमाग है। और जो ही निकल जाएगा, इस शरीर का कुछ भी मूल्य नहीं। ये कीड़े मकोड़े इसे खा जाएंगे, इसको कुत्ते सियाल खाएंगे और टट्टी कर देंगे तो वो टट्टी हो जाएगा यही शरीर। इसलिए पहली बात समझो, ये भारत की संस्कृति का उपदेश है, विश्व में कहीं नहीं है ये। इसलिए इसके अंदर में आत्मा है, वो सनातन है। और जिसका अंश है, जिसने इस सबकी सृष्टि की है, वो प्रभु जो है वो सनातन है, उसको भी कहा गया हो भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कृषाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सनातन है। कौन है? राम कृष्ण, ये सनातन है। अभी आज उनका दर्शन किया, इस रूप में लाखों वर्षों के बाद में कृष्ण को बंसी लिए हुए राधा जी को बाएं रखते हुए दर्शन करेगा। राम का वही रूप चाहे करोड़ों वर्ष पहले कोई देखा हो या करोड़ों वर्ष बाद में जब उनका त्रेता युग में जन्म होगा, उसी रूप में जन्म होगा। सीता जी उनके साथ में रहेंगे, हनुमान जी जरूर उनके साथ में रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। इसलिए एक सनातन हुआ जीवात्मा और दूसरा सनातन हुआ परमात्मा। परमात्मा का भी मूल ये संबंध, इसके बीच में जो संबंध है उस आत्मा और परमात्मा के बीच में, वही सनातन धर्म है। वो क्या है? प्रेम है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, भगवत प्रेम स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंदमय है, परमात्मा सत चित आनंद है, उसका रूप है, उसकी गुण है, लीलाएं हैं, क्रियाएं हैं उस ब्रह्म की। भगवान निराकार मत समझो, जब भगवान निराकार है जब आता है तो रूप धारण कर लिया, यह गलत बात। भगवान का रूप नित्य है, सनातन है। कोई लोग ये कह सकते हैं कि यदि हम भगवान का जन्म मानते हैं तो मृत्यु तो जरूर होगी, तो भगवान क्या भी जन्म लेते और मरते हैं? ऐसा मत सोचो, जीवात्मा का ही जन्म मरण नहीं है। गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में, कृष्ण ने ये उपदेश दिया अर्जुन को, वो सनातन है, शरीर बदल जाएगा किंतु आत्मा नहीं बदलेगी। शरीर ध्वंसमय है, वंशास जीर्णानि जथा पिहाय इत्यादि बहुत श्लोक है। इसलिए इसके अंदर में जीवात्मा नित्य है और उसका जो बनाने वाला है वो प्रभु जो है नित्य है, उनका रूप है। यदि खूब अच्छी तरह से सुनिए, यदि गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। अभी आपको कहीं जाना है क्या? आज आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे जो गायक हैं और हमारे जो वादक हैं इनको भी नहीं जाने देंगे। आज जाएंगे तो हम सत्याग्रह कर देंगे। आज कहीं कोई प्रोग्राम नहीं, बस एक घंटा डेढ़ घंटा यहीं पर चुपचाप बैठिए और बीच में कहेंगे तो एक कीर्तन सुना दीजिएगा। तो देखो, यदि भगवान का रूप ही नहीं तो ये सारा संसार, इतना रूप, ये आया कहां से? यदि पिता को ही रूप नहीं है तो बेटे का रूप कहां से आ जाएगा? इसलिए समझो मत जे भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं और रूप हैं मत समझो। एक साहित्य की दृष्टि से बतला रहा हूं, भाषा की दृष्टि से। रूप से अरूप बना है, अरूप से रूप नहीं बना। रूप है ना, उसमें अ लगा करके और रूप बना। गुण है, उस गुण में न लगा करके निर्गुण बना। जन्म है, उसमें अ लगा करके अजन्मा बतलाया गया। यदि रूप न हो, गुण न हो, तो निर्गुण और निराकार शब्द बन ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। इस चीज को समझो, खूब विचार करके सुनना, जीवन में काम आएगा। तो आकार से निराकार बना है, निराकार से आकार नहीं, ये रोग है, उपाधि उसको कहते हैं, है? उपसर्ग। उपसर्ग माने बीमारी का लक्षण। भगवान का रूप है और इसीलिए ये सब रूप हैं। शून्य से जगत की सृष्टि नहीं हो सकती, इस चीज को भी समझो। एक कॉज एंड एक्शन थ्योरी है, कार्य कारण बात। माने क्या? आम का बीज है, गुठली है, तो उसे आम का पेड़ होगा, उसे फल मिलेगा। बबुल का बीज लगाइए, उसे फल आम का नहीं आएगा। जिस चीज का बीज होगा उसी तरह का पेड़ होगा, वैसे ही फल निकलेगा। तो यदि भगवान का, कृष्ण का, राम का रूप नहीं होता तो ये सारा जगत कहां से आया? इसलिए हमारे यहां पर वेदों में ऐसा है, वेद अभ्रांत ग्रंथ और भगवान के द्वारा ये निकला है, ये झूठ कभी भी नहीं हो सकता। चाहे सारा विश्व झूठा हो जाए, वेद झूठा नहीं हो सकता। तो उसमें ऐसा बतलाया गया है, क्या? पूर्णम मदः, पूर्णम इदम्, पूर्णात् पूर्णम् उदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णम एव आदाय पूर्णम एव शिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जितना भी जो कुछ भी निकले वो भी पूर्ण है। जैसे राम निकले उनसे, उन्हीं से बरादेव और भगवान के जितने अवतार निकले हैं वो भी पूर्ण है, और जिससे निकला है वो कृष्ण स्वयं भगवान है वो भी पूर्ण है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अर्थात वो प्रभु ऐसे हैं उनमें से जो कुछ भी निकले वो खंड नहीं उसका होगा, वो पूर्ण के पूर्ण ही रहेंगे। उसमें पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो वो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए भगवान ऐसे हैं, इसलिए हमारे कृष्ण जो हैं, राम हैं, वही सबके सृष्टि के आदि हैं, उन्हीं से सृष्टि होती है, वो सनातन हैं और उनके दास जीवात्मा हम लोग हैं। मानो और न मानो, जितने भी संसार के प्राणी मात्र हैं, वो चाहे पेड़ पौधों में हो, मनुष्यों में हो, स्त्रियों में हो, पहाड़ों में हो, पशु पक्षियों में हो, आत्मा है, वो है क्या? भगवान का अंश है और उनका नित्य दास है। हम लोग किसी कारण से कुछ दोष करने के कारण माया ने हमें पकड़ लिया और हम भूल गए कि मैं कौन हूं, और शरीर को ही हमने समझा कि मैं हूं माया के कारण। जैसे कोई व्यक्ति खूब अधिक दारू पी ले और वह भूल जाता है अपने को, ऐसे ही हम लोग इस समय भूले हुए हैं। हम समझते कि ये शरीर ही हाड़ मांस चाम का ये शरीर ही मैं हूं। कैसे हुआ? जो ही हमने भगवान को विस्मरण किया, भूल गया, ठीक उसी समय में माया उनकी है, उसने पकड़ लिया हमें और एक शरीर ऊपर से कपड़ा दे दिया, इसके अंदर में एक और कपड़ा दे दिया। वो कपड़ा क्या? मन बुद्धि अहंकार चित्त, और इसके अंदर में आत्मा है। यही गीता का, वेदों का, शास्त्रों का है। जब तक हम भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। एक बात और भी समझिए, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, एक केंचुआ, केंचुआ समझते हैं जो रेंगता है बरसात के दिनों में, चाहे कोई भी प्राणी हो वो सुख चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता संसार में? यहां पर भी ऐसा कोई है जो सुख नहीं चाहता, दुख चाहता है? नहीं, सभी लोग सुख चाहते हैं। क्यों? क्यों सुख चाहते हैं? इसलिए जो मूल भगवान है सबके सृष्टा, वो सच्चिद आनंद है, सच्चिद आनंद में केवल ठोस सुख स्वरूप है, आनंदमय है, इसलिए उनका अंश भी सुखी रहना चाहता है। किंतु अभी हम सभी दुखी हैं संसार में। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस जगत में, यहां पर भी संसार में, चाहे अमेरिका के फोर्ड हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे रशिया के हो और चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे यहां के हॉलैंड के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, सभी लोग दुखी हैं। आप लोग भी दुखी हैं। आप लोग समझे और न समझे में मैं डॉक्टर समझता हूं। क्यों? जन्म में दुख है, मरण में दुख है ना, बुढ़ापे में दुख है। अभी नहीं मालूम पड़ता है नौजवानों को, नौजवतियों को, जरा बूढ़ा हो जाओ, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष का हो जाओ, और जब चलने में लकड़ी भी पकड़ करके, डंडे पकड़ के भी चलने में ऐसा, और सुंदरता चली जाएगी, दांत टूट जाएंगे, गाल पिचक जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भी तुमको नहीं पूछेंगे, कजे क्यों नहीं मर जाता है, दिन भर खांसता है। इस चीज को समझो,
वो कहें जल्दी से मर जाए, बुढ़ा बुढ़िया मर जाए, और उसी का धन संपत्ति हम लोग कर्ज लेकर के खा रहे हैं, ये समझो, इसलिए संसार में दुख। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बचपन से ही जिसको दुख या बीमारी नहीं है। ऐसा कोई आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है?
जरूर बीमारी है,
किसी न किसी प्रकार का बीमारी, किसी में पेट की कुछ गड़बड़ी है, किसी को श्वास में है, किसी को कुछ कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गई, किसी को हेडेक है, किसी को कुछ है, कुछ न कुछ। अभी यहां नहीं मालूम होता है, डॉक्टर खाना में जाओ तो लाइन लगी हुई है हॉस्पिटलों में, लाखों लोगों की भीड़, किसी न किसी प्रकार का आज नहीं है तो कल हो जाएगा। यह शरीर रोगों से ही बना है, इसलिए सभी दुखी हैं, इसलिए सुख चाहते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ति मां नहीं कर्मणि आरोहमानानां दुःखतये सुखाय। यह संसार एक ऐसा है जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से माने अकेले, और सामाजिक रूप में यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र में सारे विश्व के बुद्धिमान लोग वहां पर इकट्ठे हैं, और वो लोग विचार करते हैं कि कैसे युद्ध न हो और संसार सुखमय हो, चेष्टा तो करते हैं। होता है जब से ये सृष्टि हुई है उसी समय से ही तो ये ऐसा चला रहा, ऐसा कभी हुआ जो युद्ध न हो? अभी कुछ दिन पहले ग्रेट वार हो गया ना, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी लड़ाई की एकदम घोषणा हो ही गई थी, और एटम बम इत्यादि चलने वाले थे, प्रभु की इच्छा से अभी बंद हो गया। इस संसार में सब समय दुख में है, चाहे सब लोग मिलकर के प्रयास करें, यहां तक कि कृष्ण भी आए, स्वयं भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, किंतु महाभारत का युद्ध रोका नहीं, रोका वो खुद गए सुलहनामा कराने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच में, पांडवों के दूत बनकर के गए हस्तिनापुर में, आप लोग शायद जानते होंगे, और जाकर के कहा, दुर्योधन क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो, पांडव लोग तो भले आदमी हैं, तुम उनको 5 गांव दे दो और बाकी सबका राज्य तुम करो, सुलहनामा कर लो, लड़ाई मत करो। उसने कहा एक सुई का नोक भी नहीं देंगे। कृष्ण सब जानते हैं और चाहते हैं कि यह युद्ध हो और दुष्ट लोगों का संहार हो, इसलिए तो आए थे भूभार हरण करने के लिए, इसलिए वो कैसे सुलहनामा करा देंगे, इसलिए सुलहनामा नहीं हुआ। व्यास यदि चाहते करो, पांडवों को कहते बैठ जाओ मत युद्ध करो, युद्ध नहीं होता है। नारद जी कहते तो हो जाता, किंतु उन लोगों ने रोका नहीं, क्यों? यही नियम है जगत का, जगत एक जेल खाना है, इस जेल खाने में कोई यदि सुखी रहना चाहे तो क्या होगा, वो मूर्ख है, पूरा मूर्ख है, जेल खाने में सुख के लिए गया है। ऐसे ये माया का जेल खाना है, जो भगवान के चरण में कुछ अपराध करते हैं वो यहां पर आते हैं, इसलिए इसमें सुख नहीं है। कल न परसों जरूर मरना पड़ेगा, आज कल या परसों या बरसों मरना जरूर पड़ेगा, ये ध्रुव निश्चित है, याद रखो, इसलिए भगवान का स्मरण करो, यही सनातन धर्म है। जैसे एक घर बनाने में ना? वो ताजमहल है क्या? ताजमहल है ना, तो ताजमहल जोड़ने में ईंट में जोड़ाई जब हुई या पत्थर की जुड़ाई हुई, संगमरमर पत्थर की, तो ये जोड़ाई होती है या तो मिट्टी के गिलवे से होगा, मिट्टी को नरम करके मिट्टी से, और उससे एक ईंट को दूसरे ईंट को जोड़, इससे अच्छा होगा यदि सीमेंट से जोड़ दो तो कुछ दिन रहेगा, उससे भी आजकल नए नए तरीके निकल रहे हैं, किंतु जीवात्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ोगे, मट्टी से जुड़ेगी या सीमेंट से जुड़ेगी? वो जुड़ेगी प्रेम से, बिना प्रेम के नंदलाला नहीं मिलता, इसलिए भगवान को कहा गया है कि वो प्रेम के एम्बॉडीमेंट है, वो प्रेम की मूर्ति है भगवान। इसलिए प्रेम से भगवान और जीवात्मा दोनों जुड़ते हैं, इसी का नाम सनातन धर्म है। यह प्रेम हिंदू धर्म सनातन नहीं है, मुस्लिम धर्म सनातन नहीं है, ईसाई धर्म सनातन नहीं है, ये जीवन को धारण करने के लिए एक कलाएं मात्र हैं। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ो। कौन? ये शरीर का जो धर्म है खाना पीना, संसार में ये हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे बंधु हैं, उनसे प्यार करना, ये सब धर्म है। हमारा हिंदू धर्म दो प्रकार का है, एक तो वो है साधारण रूप में माता पिता स्त्री पुत्र संसार ये सब लेकर के है, और दूसरा है जो सनातन धर्म को लेकर के भगवत प्रेम को लेकर के चलने वाले हैं, तो वो तो सनातन है। किंतु ये जब हम शरीर ही ये सनातन नहीं है, आपका शरीर सनातन नहीं है, तो दोनों में प्रेम कैसे सनातन हो जाएगा? यदि हम आज देखते हैं कि पश्चिम देश में, इन देशों में आज शादी किया और कल डाइवोर्स तैयार है, बहुत ही कम ऐसी लेडी और लड़के होंगे जो कि 10 वर्ष 5 वर्ष बिता दिया एक स्त्री पुरुष, प्राय दूसरी तीसरी चौथी पांचवी दसवीं वो विवाह होता है, विवाह नहीं वो तो क्या है लव मैरिज जिसको कहते हैं, वो नहीं टिकता, वो नहीं टिकेगा। क्यों? उसमें स्वार्थ है। प्रेम तो वह है सीता का, देखो जब राम ने उनको वनवास भी दे दिया तो वो प्रेम क्या छूटा? नहीं छूटा, और राम भी उनके लिए तड़फ रहे हैं। राम ने सीता को त्याग नहीं किया, एक राजा ने अपनी बात के लिए रानी का त्याग किया, इस बात को समझना। रामायण का अर्थ बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। इसलिए सनातन धर्म हमारा प्रेम है, और इसी की शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण या राम आए। देखो तो राम लक्ष्मण भर सीता में कितना प्रेम है, अगाध प्रेम। राम के लिए लक्ष्मण जी ने सब कुछ त्याग कर दिया। सीता जी को देखो, जनक नंदिनी, जनक की लड़की है, लक्ष्मी स्वयं है, उनका पैर कितना कोमल होगा, और राज्य इत्यादि सब छोड़ करके जनकपुरी नहीं जा करके अयोध्या में न रह करके आराम वनवास के लिए चले, तो वो पीछे पीछे वो भी हो लिया। आजकल शायद ऐसा नहीं होने वाला, स्वच्छ प्रेम जगत में होने वाला बहुत कम है ना। और देखो जिस समय में राम लक्ष्मण लंका से विजय करके आए, अयोध्या में राज तिलक हुआ, राज तिलक होने के बाद में 11,000 वर्ष तक राम ने राज्य किया, और एक धोबी ने कह दिया अपनी धोबिन को, धोबिन को समझते हैं ना वाशरमैन, अपनी पत्नी को कह दिया, तुम शाम को रात में देर करके घर से क्यों आई घर में, मैं राम नहीं हूं, और 1,00,000 उसकी पीठ में मार करके उसको अपने घर से निकाल दिया, ऐसी स्त्रियों को मेरे घर में निर्वाह नहीं होगा, मैं नहीं रख सकता, मैं राम नहीं हूं। राम को पता लगा खौफिया पुलिसों से, ओ राज्य में हमारी निंदा हो रही है, क्योंकि ये सीता जी रावण के घर में रही और रावण ने इनका शरीर छू दिया, सीता जी का तो कोई दोष नहीं था तो जबरदस्ती छुआ। तभी राम ने प्रजाओं को शांत करने के लिए सीता को वनवास दे दिया, कब तक के लिए? जीवन भर के लिए। सीता जी गर्भवती थी ना, और उनको वनवास दे दिया। वनवास दे दिया, सीता जी को पीछे पता चला, वो विलाप करने लगी। पीछे से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई और उनको लवकुश दो बच्चे पैदा हुए। किसी प्रकार से वो वहीं पर रह करके अपना जीवन बिताने लगी और अपने बच्चों को शिक्षा देने लगी, किंतु राम को तो भूल नहीं सकती। और इधर में राम की क्या दशा है समझो। रामचंद्र जी जैसे राजमहल में तो हैं, किंतु सीता के बिना उनका मन नहीं लगता, रोते हैं, कलपते हैं। सीता जी जैसे वन में हैं, राजमहल में चटाई बिछाकर और वहीं पर आते हैं और किसी प्रकार से फल मूल लेकर के जीवन निर्वाह करते हैं। हमारी प्यारी सीता जी कैसे होगी, तो मैं यहां पर राजमहल में राज का सुख भोगूंगा, पलंग इत्यादि का, सोना, अच्छा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। मन नहीं लगता, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, किंतु कहें किससे, किसी से कह नहीं सकते। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, जे गुरु जी एक बात कीजिए, मैं यज्ञ करूं तो हमारा मन लग जाएगा। उन्हें तुम जो यज्ञ नहीं कर सकते, क्यों नहीं यज्ञ कर सकता, तुमने अपनी सीता जी को तो वन में भेज दिया, बिना स्त्री के कोई गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, तो भी मैं चाहता हूं गुरु जी हम यज्ञ करें, तो तुम ऐसा करो जो सीता जी को बुला लो। कहे ये तो हो नहीं सकता, यह असंभव है, तो फिर यज्ञ भी असंभव है। नहीं गुरु जी आप कोई उपाय निकालिए, ऐसा करो जो तुम फिर से कोई शादी कर लो, तुमसे लाखों लड़कियां शादी करने के लिए तैयार है, तुम अभी इतनी उम्र का हो गया किंतु तुमको अभी मोक्ष की रेख नहीं आई। भगवान का यह लक्षण है, भगवान 11,000 वर्ष के हो गए थे, उनको मोक्ष नहीं आई और ये दाढ़ी गोफ कुछ नहीं आया, एकदम जैसे 16 वर्ष के नवयुवक होते हैं उसी प्रकार से थे। इसलिए कहा जैसे तुम चाहो तो अभी लाखों स्त्रियां तुमसे शादी कर सकती हैं। कहे मैं दूसरी शादी तो मैं मरने पर भी नहीं करूंगा, तो फिर यज्ञ भी कैसे करेगा। नहीं गुरु जी कोई उपाय बदला, मैं यज्ञ करूं। अच्छा एक बात करो, सीता जी की मूर्ति सोने की बनाओ और बना करके उनको बाएं रख करके यज्ञ करो। हाँ ये कर सकता हूं। फिर सीता जी की मूर्ति बनाई गई सोने की, प्राण प्रतिष्ठा किया वशिष्ठ जी जैसे लोग और स्वयं राम, तो उनमें प्राणों का संचार हो गया उस सोने की मूर्ति में भी, उसके साथ में यज्ञ हुआ। इधर में दोपहर में वो लवकुश अब 8-9 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, वनवासियों जैसा वेश बनाया है, वाल्मीकि जी की कुटी में रहते हैं जंगल में, और उनके केले इत्यादि जो फल होते हैं वही खाते हैं, और उनको सब पढ़ाया लिखा, सब शास्त्र एकदम विशारद कर दिया और गाने में निपुण कर दिया, कमाल है ना। अभी ये क्या गाते हैं वो बच्चे, 9-10 वर्ष के किशोर, गला बड़ा सुरीला, मूर्छना युक्त चढ़ाव उतराव के साथ में वो गाते थे, बहुत सुंदर रूप से, मानो मूर्ति खड़ी हो जाती थी जब गाते थे। तो वो वाल्मीकि रामायण को याद करके उन्होंने जैसे सुर से कहा था वैसे सुरेले कंठ से नाना प्रकार के छंदों में और राग रागिणियों में गाते थे, सब लोग रोने लगते। तो वो दोपहर को यज्ञ समाप्त होने के बाद में वो दोनों आकर के दोनों बच्चे और गाते थे। पहला दिन आरंभ किया जन्म से लेकर के, फिर दूसरे दिन में किया, फिर तीसरे दिन में उनका वनवास भी गाया, किंतु उनको पता नहीं ये मेरे पिता ही राम बैठे हैं। किंतु कौशल्या मैया, सुमित्रा और कई कई और जितने लोग थे ये कह रहे थे ये बेटे मालूम होते हैं कि राम के ही हैं, इतने सुंदर बच्चे, राम ही जैसा ये है, वो जरा बड़े हैं ये छोटे हैं, ये कैसे हो सकता है, या राम इनके पिता हैं, किंतु ठीक कहने कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आज जब कीर्तन करने के बाद में शाम को
रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण ये बड़े सुंदर गाते हैं, सभी लोग रोते हैं इसका गाना सुन करके। सोने के थाल में हीरे मोती जवाहरात भर करके और ले जाओ इसको दो। ये रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के ये तुम्हें इनाम उपहार दे रहे हैं, ले लो। और इनसे पूछना ये तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी मैया का नाम क्या है, तुम कहां के रहने वाले, जरा पता लगा ले लेना। तो जब उनका गान समाप्त हो गया तो लक्ष्मण जी आए सोने के भरे हुए थाल में, मणि मुक्ते जवाहरात हीरे सब भर करके उनके सामने ले गए। बेटे ये रामचंद्र जी राजा हैं, इन्होंने तुम्हारे लिए उपहार दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। ने कहा जी मुझे इससे क्या जरूरत है, मुझे, मैं वन में रहता हूं, जंगल में हमारे गुरु जी हैं, उनके आश्रम से केले अमरूद आम सब खाते हैं, कपड़े के लिए वो केले के पत्तों से अपना ये बना रखा है, लपेट लेते हैं, और पानी पीने के लिए लोटे की जरूरत नहीं, अंजलि से पानी लेकर के पी लेते हैं, हमें क्या जरूरत है ये हीरे जवाहरात से, ये तुम लोगों के लिए शोभा देता है, अपने राज्य में रखो कोषागार में, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं। अब तो देख करके और भी बड़े प्रभावित हुए और सारी प्रजाएं जो सुन रही थी लाखों वो आनंद से गदगद हो गईं। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा जो इतना रुपया हीरा मोती दिया और इसने ठुकरा दिया। तब वो बोले अच्छे बेटे ये बतलाओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मैया का नाम क्या है, कहां रहते हो तुम। उन्होंने कहा जी लक्ष्मण जी मैं तो सोचता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, साधु संन्यासियों के, ब्रह्मचारियों और सन्यासी का घर और उसका माता पिता काम नहीं पूछना चाहिए, पूछो तो पूछो उस तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, इसलिए हमसे भी आप लोग मत पूछेंगे। महाराज जी आपका जन्म कहां हुआ, आपके पिताजी का नाम क्या है, ब्रह्मचारियों से भी नहीं उनसे पूछे तो तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है, यही उनकी परंपरा है, तो आपने उल्टा पूछा, ये आपके लिए मुख से शोभा नहीं देता विद्वानों के मुख से। लक्ष्मण जी बड़े लज्जित हो गए। रामचंद्र जी को ठीक से पता हो गया विश्वास, हो न हो ये हमारे जरूर बेटे हैं। वाल्मीकि जी को बुलाया, वाल्मीकि जी आपको नमस्कार है, हमको ऐसा लग रहा है कि आपके आश्रम में मेरी प्रिया सीता जी हैं, कल उनको बुला करके लाओ। उन्होंने कहा ठीक है हम कल लाएंगे, हमारे पास में ही है, बहुत दिनों से हमारे पास, और ये लड़के जो हैं आप ही के हैं ये भी मैं जानता हूं, और वाल्मीकि रामायण में हमने पहले से ये लिख रखा है, वो अभी आने वाला है, ये सुनाएंगे बच्चे आपको, तो कल आप ले आइए। दूसरे दिन उन्होंने वो गए, पहले तो जबकि ये लवकुश वहां पर पहुंचे सीता जी उनके लिए प्रतीक्षा, आज बहुत देर विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया, तुम क्यों देरी से आए, आने में क्यों विलंब हुआ, देर हुई। उन्होंने कहा जी मैया आज मैं कोई राजा है राम उनकी सभा में गया, वहां पर मैं वाल्मीकि रामायण का पाठ करने लगा, सब लोग रोने लगे, बड़े बड़े प्रसन्न हुआ, आंखों से सबके आंसू बह रहे थे। मैंने वहां एक अजीब चीज देखी, विचित्र चीज देखी, क्या मैया वहां पर मैंने देखा एक सोने की मूर्ति थी ठीक तुम्हारे जैसे, तुम बोलती है वो बोलती नहीं थी, तुम हाथ हिलाती हो गोदी में ले लेती हो किंतु वो जरा बोलती नहीं है, हाथ नहीं हिलाती, किंतु ठीक तुम्हारी जैसे। सुन करके सीता जी विलाप रोने लगते, ओहो राम ने हमको नहीं छोड़ा है? राजा ने हो सकता छोड़ दिया, राम यदि हमको छोड़ देते तो हमारी सीता को वहां रख करके क्यों यज्ञ करते। इतने में वाल्मीकि जी आए, बजे कल उनकी सभा में तो आपको भी चलना है, आपके दोनों बेटों को चलना है। दूसरे दिन सीता जी अपने दोनों बच्चों को अपने उंगली पकड़ करके लेकर के चली,
और राज्यसभा में पहुंची। आगे आगे वाल्मीकि जी चले। जब सभा में पहुंचे तो सब लोग देख करके एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए, एकदम सभी लोग शांत प्रशांत। उस समय में रामचंद्र जी अपने सिंहासन से उठ करके बोले, सीता जी आप पधारिए, किंतु एक बात है, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप प्रमाण कीजिए कि आप पतिव्रता हैं, मैं ये सुनना चाहता हूं, आप अपने मुख से ऐसा कोई प्रमाण दीजिए। सीता जी ने कहा, अभी भी प्रमाण की जरूरत है, आपके पिताजी आए, उन्होंने कहा जे सीता जी पवित्र हैं, वायु आए, अग्नि आए, सभी देवता लोग आए और प्रमाण दिया सीता जी परम पवित्र हैं, फिर भी आप मुझसे प्रमाण चाहते। अच्छा तो मैं प्रमाण भी दे रहा हूं, क्या प्रमाण दिया? उन्होंने कहा भरी सभा में, यदि मैंने अपने तन से मन से वचन से राम के अतिरिक्त किसी की चिंता कभी नहीं की हो, मन हमारा स्पर्श नहीं किया हो, तो हे धरित्री देवी पृथ्वी देवी आप फट जाएं और मुझको गोदी में ले लें। फिर से कहा, मैंने तन से मन से वचन से कोई पाप न किया हो और राम के अतिरिक्त अपना पति दूसरे को नहीं जानती हूं, तो हे पृथ्वी आप फट जाएं, मैं आपके अंदर में, क्योंकि आप ही से हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी से ही हमारा जन्म हुआ है। तीन बार कहा, पृथ्वी वहीं पर फट गई और पृथ्वी देवी सोने के मंच पर उपस्थित हो करके और उनको गोदी में लेकर के जो ही लिया और पृथ्वी फिर जुट गई, फिर हाहाकार मच गया। सीता जी का कैसा चरित्र देखो, कैसा चरित्र है, पत्नी हो तो ऐसे और पति भी हो तो ऐसे। देखो तो भरत के लिए राज्य को गेंद के समान में खेल रहे हैं, ऐसा आजकल कोई है नहीं है जो प्रेम के लिए अपने भाई के लिए सर्वस्व राज्य को गेंद बनाते। इससे भी अधिक देखो, राम ने सीता जी को तो बाहर कर दिया घर से, राधिका जी को घर से बाहर कर सकते हैं कृष्ण? कदापि नहीं कर सकते, बल्कि राधा जी प्रेम से कहेंगी जे तू हमारे कुंज से निकल जा काले, धूर्त झूठ मक्का लंपट, गालियां भी सुना देंगी, तुम हमको कुछ खाने पीने के लिए देता है ना, कपड़े देता है ना, पानी पिलाता है, हमारे कुंज से निकल जाओ, और कृष्ण हाथ जोड़ करके उनके पहिया पड़ेंगे। ये प्रेम है, प्रेम है तो देखो तो कृष्ण के लीला चरित्र में प्रेम है। इसीलिए भगवान राम कृष्णचंद्र जी प्रेम देने के लिए यहां पर आए, और वही कृष्णचंद्र जी और भी राधिका जी का भी कंप्लेक्शन गोल्डन कॉलर ब्यूटी और उनके भावों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु होकर के नवद्वीप में पधारे हैं। ये प्रेम है, प्रेम हो तो ऐसा कभी नहीं छूटे। आजकल का प्रेम ऐसा नहीं, आजकल का प्रेम एक पैसा एक कौड़ी का दाम नहीं, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो गई, पान से चूना थोड़ा सा हट गया, बस डाइवोर्स तो एकदम पक्का है, डाइवोर्स पक्का। इसलिए ऐसा नहीं, भाई भाइयों में प्रेम नहीं, थोड़े से पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये कली काल है। इसलिए सनातन धर्म प्रेम है, प्रेम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्रेम होगा कीर्तन से। थोड़ा सा एक कीर्तन करो तो, आप ही एक कीजिए, आपके एक कीर्तन कीजिए तो।
छियालीस
अच्छा दो एक बातें और भी आप लोगों से कहना उचित समझता हूं। देखो सनातन धर्म साधारण नहीं है, विश्व के किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और अब जितने भी धर्म हैं, भगवान का रूप लोग नहीं मानते, भगवान की विग्रह मूर्ति का पूजन नहीं करते, और इसके लिए हम हिंदू सनातनियों को वो निंदा करते हैं। किंतु देखो एक बात कहते हैं, गॉड, गॉड माने क्या होता है इसका भी कुछ माने होता है, जी ओ डी, जी जनरेटर सृष्टि करने वाला, ओ ऑपरेटर संचालन करने वाला, डी डिस्ट्रक्टर अंत में जगत का प्रलय हो जाता है, जिससे वो गॉड है। तो जिस गॉड में रूप नहीं है, जिस गॉड में दया नहीं है, मर्सी नहीं है, जो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, जिसका दिमाग ही नहीं है, निराकार निर्विशेष निरंजन है, उस गॉड से हमें क्या जरूरत है? वो गॉड गॉड नहीं है, जो रूप ही धारण नहीं कर सकता। इस चीज को समझो। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया, स्त्रियों को बनाया। तो ये उनके ग्रंथ से निकाल देना चाहिए, बाहर बाहर कर देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कर सकते, किंतु फिर भी भगवान का रूप नहीं मानते हैं। इसलिए यह बात ठीक है, गॉड है क्रिएटेड मैन आफ्टर ही जो ओन इमेज, उनका रूप है उसी से बनाया। जेसस जी क्राइस्ट को अपना पिता मानते हैं, फादर मानते हैं, तो बेटे का रूप है तो बाप का रूप नहीं होगा? बिना रूपी का बाप ही नहीं है, बेटा हो कैसे हो जाएगा? इसलिए इस चीज को समझो, जब जेसस छोटे से बच्चे थे 15-16 वर्ष के, तो वो भारत वर्ष में गए, वृंदावन में गए, अयोध्या में गए, जगन्नाथपुरी में गए, और वहां के विचारों को सुना, बड़े प्रभावित हुआ। इसलिए भक्ति भगवान को माना, नहीं तो कहां लोग भगवान को मानते हैं। इतना तो किया किंतु थोड़ी सी कमी रह गई। वो क्या? देखो, कृष्ण को उड़िया भाषा में, जगन्नाथपुरी में उनको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण, कृष्ण है नाम ना, तो उनको कृष्ण कहते हैं। और फिर कृष्ण से ये क्या हो गया, कृष्ट, और कृष्ट से क्रिस्ट, और वो वहां से आते आते फिर जब लौटे तब तक तो वो क्राइस्ट हो गया। देखो कैसे ये बढ़ा, पहले कृष्ण, फिर कृष्ट, फिर क्रिस्ट, फिर क्रिस्टस, और फिर क्राइस्ट। ये कृष्ण ही, ये क्राइस्ट है, ऐसा समझो। इसलिए कृष्ण जैसा बाप है, ऐसे ये सबका ये जन्म हुआ है। इसलिए एक ही चीज है, अल्लाह खुदा गॉड, ये 10-20 नहीं है, सारे विश्व के एक ही संचालक और सृष्टि करता है, वही स्वयं भगवान है। क्राइस्ट को जो कहते हैं वो, जो उनका आकार नहीं है, गलत है, कृष्ण का रूप नहीं है, वही तो क्राइस्ट उनको ही कहते हैं। इसलिए उनमें प्रेम है कृष्ण में। कैसा प्रेम? बंसी बजाते हैं, और राधा जी परम सुंदरी उनके पास में, उनकी शक्ति है, वो साधारण नारी नहीं है, ऐसा समझो। और प्रेम देने के लिए जगत में आए हैं। पूतना उनको मरने के लिए स्तन में विष भर करके गई, या उसको माता की गति दे दी, ये साधारण बात है। कुरान में भी ऐसा लिखा, लोग भी मूर्ति नहीं मानते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते, किंतु कुरान शरीफ में भी लिखा गया, इन्ना लाहा खलाका मेन सूरत ही, सूरत माने होता है रूप, खुदा का जैसा रूप है ऐसा मनुष्यों को बनाया। जबरदस्ती करके नहीं माने वो दूसरी बात है, किंतु उनके धर्म ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में ये सब लिखा है। इसलिए आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे वंश में आप लोगों का जन्म हुआ है, सनातन धर्मियों के वंश में आपका जन्म हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। देखो एक और बात थोड़ी सी आप कह करके समाप्त करूंगा। तुलसीदास जी जो वाल्मीकि के अवतार हैं, रामायण तुलसीदास लिखा, ये तुलसीकृत रामायण में सारे जितने वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत सब उसमें है, उसका अनुवाद है केवल वो, इसलिए वो इतना प्रामाणिक है। उसमें उन्होंने लिखा कि जितने भी शास्त्र आगम निगम वेद उपनिषद पुराण हैं, सबका सार है भगवान की सेवा। बिना भगवान की सेवा के कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। और उसके लिए 9 उदाहरण दिया। उन 9 उदाहरण क्या है? कमठ पीठ बरुजा मही बारा। कछुआ, कछुआ के पीठ पर केश नहीं होते हैं। कि होता है, कभी देखा है कछुआ? कछुआ के पीठ पर बाल नहीं होते हैं, केश नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं हम मान लेते हैं कि होता है, ये हम मान लेंगे। और बंध्या सुत बरु काहि ही मारा, बांझ लड़की को स्त्री को बेटा हो गया वो मर गया, ये ठीक है कि गलत है? आया समझ में? एक बांझ थी उसका लड़का मर गया, माने क्या? नहीं समझ में आया?
बच्चा नहीं होता तो बांझ मर
गया। अरे जिसको बच्चा ही नहीं होता उसका बच्चा कहां से मर जाएगा? तो कहते ये भी हम मान लेंगे। नव फूला ही बरु बहु विध फूला, आकाश में बहुत से फूल खिल जाए। आकाश में कहीं फूल खिलेगा, गुब्बारा छोड़ दो तो वो तो फूट जाएगा, किंतु वहां पर फूल नहीं खिलते हैं, वहां पर मिट्टी नहीं है, तो वहां पर गेंदा का फूल, कमल का फूल, ये कहां से खिलेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं हम इसको भी मान लेंगे। अंधकार बरु रवि न सावे, अंधकार भले ही सूरज को निगल जाए, अरे सूर्य के उदित होते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, वो अंधकार कैसे सूर्य को मिटा देगा? ये कभी नहीं। बादल भी सूर्य को नहीं ढकता है, हमारी आंखों को ढकता है, इसलिए ये भी गलत है। और बरु जामही सशीष विषाना, खरगोश होता है, जानते हैं खरगोश?
बहुत है रवि,
उनको सिंग नहीं होती है खरगोश को, क्या?
रैबिट,
नो हॉर्न्स टू रैबिट्स, नेवर, उनको भी हो जाए। और अंतिम कहा, बारी मथे बरु हो यकृता, शिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। पानी को मथने से, बिलोने से, मथनी से भले ही घी निकल जाए नहीं होगा। और रास्ते की जो रेती है, बालू है, रेती, उसको भले ही घानी में पीसो तेल नहीं निकलेगा। किंतु कहता है कि हम इसको भी मान लेंगे, किंतु बिना हरि भजन के कोई भी जगत में सुखी नहीं हो सकता है। आप लोग भी ऐसे गांठ बांध करके रख लीजिए, लाख चेष्टा करें, रुपया पैसा सुख नहीं दे सकता, कभी सुख नहीं दे सकता है। नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना, भागवत कहते हैं डंके की चोट, डंके की चोट जानते हैं? ये भारतीय चलती भाषा का ये है, डंके की चोट। डंके की चोट से कहते हैं, घोषणा करते हैं, देखो बिन हरि भजन न भवतरिया, बिना भगवान के सुख के नहीं हो सकता। देखो ये अर्थ कमाने में भी दुखकर है, घर में बाल बच्चों को छोड़ करके हवाई जहाज से कहां कहां हम जाते हैं धन कमाने के लिए, और यदि मर जाए, धन कमाना ऐसा नहीं है, दिन रात सबको छोड़ करके और तब धन कमाना होता है, यदि नष्ट हो जाता है तब भी दुख, बहुत दुख। बैंक में आपने 1 करोड़ डॉलर रखा, यूरोपियन आज क्या यूरो रखा, और बैंक फेल हो गया, लाल बत्ती जला दी, क्या होगा? आप भी हो सकता है कि मर जाएगी। तो ये धन के कमाने में, धन को रखने में, हमारे यहां बहुत धनी आदमी थे, उनको रुपया था बैंक से, उन्होंने कितना 1 लाख रुपया निकाला और चोरों को मालूम हो गया, रात में उनके घर पे आक्रमण किया, दरवाजा को तोड़ करके उन लोगों को गन से, बंदूक से मार करके खत्म कर दिया, रुपया लेकर के चले गए। रुपयों के लिए, रुपयों के लिए स्त्री पति को छोड़ देती है, भाई भाई को छोड़ देता है, माता पिता को, बच्चा छोड़ देता है, ऐसा रुपया है, पाजी है। पाजी जानते हैं? पाजी पागल नहीं, पाजी मतलब विकेट, बदमाश दुष्ट, इसलिए इसके द्वारा घर बनाया, उसके द्वारा विवाह किया, उसके द्वारा रिलेशन जोड़े, कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, भाइयों और बंधुओं, बस एक ही निवेदन है, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का नाम लो। विशेष करके कलयुग में ये महामंत्र हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, वो सब ने नहीं बोला, जरा फिर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे हरे
हरे राम।
देखो भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो एक मिनट के अंदर में विश्व का सारा विश्व का ध्वंस कर सकते हैं, और एक मिनट में फिर लाखों लाखों यूनिवर्स को बना सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्ति नामों में भर दी, अपनी सारी कृपा उस नामों में भर दी है। इसलिए कलयुग में, कलयुग केवल एक आधार, नाम आधार, कलयुग में बस नाम, भगवान ने सारी शक्ति सारा कुछ दिया है, इस नाम को चलते फिरते उठते बैठते छींकते गाड़ी में चलाते हुए काम करते हुए रसोई बनाते हुए भी माला से करो, बिना माला का करो, कीर्तन करो, जोर से बोलो, धीरे बोलो, बिना स्नान किए, बिना खाए पिए, खाया पी करके भी, खाट में बैठे हैं, पलंग पर बैठे हुए भी नाम कर सकते हैं, और उसका फल होगा मधुर मधुर में तत मंगलम। सारे वेदों का ये सार है कलयुग में विशेष करके, कुछ नहीं कर सकते, भले दान पुण्य मत करो, कुछ भी मत करो, अर्चन पूजन कुछ भी मत करो, बस केवल एक कलयुग में भगवान का नाम करो। पूरा नाम नहीं कर सकते तो कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधे राधे, जैसा भी मुख से निकले भी करो, और गुरु पदाश्रय करके यदि हरि नाम ग्रहण करके यदि करो, मांस मछली प्याज लहसुन छोड़ करके, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो प्याज लहसुन मांस मछली, मछली मांस पत खाओ, मीट मैंने क्या होता है, MEAT, मी ईट, जिसने मुझे खाया वो कल खाएगा, तैयार हो, यदि मांस मछली खाते हो तो मछलियां आदमी बनकर के तुम्हें जरूर खाएंगी, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, रिएक्शन मस्ट बी देयर, एक्शन होगा। इसलिए मांस मछली मदिरा मत, अल्कोहल मत पान करो, सिगरेट इत्यादि धूम्रपान मत करो, नहीं तो TB और कैंसर रोग हो जाएगा, कोई भी ठीक नहीं कर सकता, जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही हमारी अंतिम उपदेश है, भगवान का नाम करो, जो जिस अवस्था में गृहस्थ है, ब्राह्मण है, जैसा है वो, बस आज ही से समझो जो तुम्हारी दीक्षा हो गई, और आज ही से घर में बैठ करके यदि हो सके तो गले में तुलसी की माला लो, नहीं हो तो ऐसे ही हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस ये मंत्र करो, देखो जो कलयुग में सज ही चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ये निगम वेद शास्त्र का मूल है, कलयुग है, कल जीवन है कि नहीं है कोई ठीक नहीं, तरह तरह के झंझट है, इसमें केवल हरि नाम सार है, और मत कुछ करो किंतु ये जरूर। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी भाई लोग, हमारी बहनें माताएं सभी लोग, और मेरी बेटियां यहां पर सब उपस्थित हुई हैं, इनके लिए बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। आज मैं बहुत गदगद हो गया कि आप सभी लोग भाषण सुनने के लिए आए, किंतु ये सुन करके वृथा न जाए, इस सनातन धर्म का जो मूल है भगवान का नाम करो, प्याज लहसुन मांस मछली ये सब छोड़ करके, और तुम लोग जो भी अपना जीवन के निर्वाह के लिए अपना काम करते हो, अपना व्यवसाय वाणिज्य जो कुछ भी करते हो करो, इसमें कोई मना नहीं, किंतु भगवान का नाम जरूर करो। गौर प्रमाण जय जय राधा रमण जय जय राधा। अंत के साथ में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो आप लोग कर सकते हैं, जहां तक हो सकता है मैं उसका उत्तर देने के लिए।
हाँ बोलिए तो
क्या क्या
क्या आपका प्रश्न क्या है?
महाराज की जय हरे कृष्ण। महाराज ने all the world you have so many religions and they accept that there is only one God.
Yes.
But I want to ask Maharaj, who is that only God that everybody says there is only God, and what's the real name of this God?
I'm telling. देखो भगवान 10-20 नहीं है, गॉड एक है। उन्हीं का नाम अल्लाह है, अल्लाह माने सबसे बड़ा। वही उसी का नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्म माने बहुत बड़ा। अणु से अणियान और महत से महान, इसलिए अल्लाह का भी नाम वही है जो ब्रह्म का नाम है, और परमात्मा का भी वह परम आत्मा जो है वही है। देश के भेद से, भाषा के भेद से, लैंग्वेज के भेद से, देशों में इधर उधर जाने के भेद से, समाज के भेद से, एक ही पानी का अर्थ जल, पानी, एक्वा, वाटर जैसे अलग अलग नहीं है। ये बहुत से नाम हैं। एक्वा भी उसी को कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, जल कहते हैं, जीवन कहते हैं, बहुत से नाम है। ऐसे ही गॉड जो जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले उनको गॉड कहा। हमारे यहां भी वैसा ही है, सत्यो सम्य इदम् अग्रासी, हमारे यहां भी ममडोनो में भी वैसा ही है। देखो बाइबिल आज से 2000 वर्ष पहले उत्पत्ति हुई, मुसलमानों का जो कुरान है वो भी 1500 कितना की 20 आजकल 1820 1900 वर्ष हो गया, किंतु हमारा ये सनातन धर्म जो है अनादिकाल से है, कभी इसका विनाश नहीं होता। वेद कब के हैं? करोड़ों वर्ष हो गए। अभी साधारण रूप में भी लोगों ने विचार किया तो देखा जैसे 8 करोड़ वर्ष हो गए साधारण रूप में भी, इसलिए भाषा के भेद से, समाज भेद के होता है। किंतु अल्लाह ब्रह्मा खुदा होने पर भी नाम, कृष्ण में जो सौंदर्य रूप है, उनमें जो प्रेम है, उनमें जो दया है, वो कहीं नहीं प्रकाशित। इसलिए भाषा भेद होने से भी भारतवर्ष में जो कृष्ण है, कृष्ण माने क्या होता है? आकर्षक, प्रेम को देने वाले, मर्सी, कृपा करने वाले, अद्भुत सुंदर, अद्भुत उनका आकर्षण, इसलिए उन्हीं का स्वयं भगवान नाम है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान। गीता सर्वमान्य संसार में ग्रंथ है, उस गीता में भी कहा नन्नत किंचित अस्ति धरंग, हमसे बढ़कर के कोई मैं ही। मैंने सूर्य को आज से करोड़ों वर्ष पहले ये गीता का ज्ञान दिया, फिर हमने फिर अब तुमको दे रहा हूं। तुम मनुष्य होने के नाते भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। इसलिए एक भगवान का एक ही नाम, इसलिए मैंने बतलाया कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण क्रिस्ट और अंत में क्राइस्ट। इसलिए ये भाषा भेद से, समाज भेद से, देश भेद से नाम भिन्न होने पर भी एक ही ब्रह्म है जो सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला, दो नहीं है। अपनी अपनी भावना के तरफ में जैसी रही जय भावना, जैसी हरि मूरत देखा।
अगर कोई भाई बहनों कुछ गुरु जी से पूछना चाहते तो उसे मौका है पूछने के लिए। और एक सवाल राधिका, राधिका आप कहाँ हो?
बोलो
राधिका। गुरुदेव, ये राधिका ने पूछा कि हिंदू के धर्म के मुताबिक जो दशरथ में चलता है कि अपना करेजा अपना लेखन इत्यादि इत्यादि दूसरा आदमी के देने के लिए कि वो भी अच्छा हो जाए, ये धर्म के मुताबिक वेद के मुताबिक।
देखो इसको धर्म नहीं कहते, धर्म कभी छोड़ा नहीं जा सकता है, प्रेम छूट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए ये लेना देना जो करना है ये शरीर के लिए है, ये सांसारिक धर्म और ये कल्याणजनक है, अच्छा तो है। किंतु जैसे एक उपमा दे करके मैं बतलाता हूं, जैसे एक अस्पताल है उसमें फ्री इलाज हो रहा, एक चोर 10-20 आदमियों को मार करके चोरी किया, लूट मार किया और अंतिम जगह में वो घायल हो गया, मरने मरने हो गया, उसको बंदूक लग गई पेट में। अस्पताल में पहुंचा और डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, ठीक हो गया। 6 महीने बाद में जब वो ठीक हो गया, बदला लेने की भावना से उसने अपने सारे साथियों डकैतों को बुला करके उस घर में गया, गोलियों से सबको, 50 आदमी थे, सबको मार डाला। अब बतलाओ ये जो मार डाला इसका पाप किस पर लगेगा? यदि वो मर गया होता तो फिर वो नहीं करता डकैती और नहीं मारता। इसलिए जिस डॉक्टर ने बचाया, जिसने अस्पताल बनाया, उस पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा, उसका भी पाप उस पर लगेगा। इसलिए समझो, इसलिए संसार में इसका रिएक्शन होता है, अच्छा काम में भी बुरा होता है। यदि सच है एक गाय जा रही, एक कसाई पीछे उसका पड़ा और कसाई ने पूछा जैसे भाई गैया इधर में गई, और यदि कहो यहां इधर देखा तो उसको वो काट डालेगा, तो तुम ये पाप किस पर लगेगा? इसलिए वहां पर यह कहना अच्छा है कि मैंने नहीं देखा, वो तो उधर में गई, तो गैया बच जाएगी, तो यह धर्म हुआ। इसलिए धर्म की गति बड़ी गहन है, साधारण लोग नहीं समझ सकते। समाप्त, इसके बाद ही में समाप्त करेंगे, इसके बाद ही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।
गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हिंदू शब्द क्या है? ये हिंदू हम लोग बोले हैं तो कुछ आदमी हम लोग छोड़ देगा, हिंदू मतलब ना सब।
हमने पहले ही बतलाया कि जो हिमालय ने? और दक्षिण में बिंदु सरोवर एक है कन्याकुमारी के पास में, उसके बीच में रह करके जो जीवात्मा और परमात्मा को मानने वाले हैं उनकी पूजा करते हैं, आत्मा को जानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, इन विचारों को लेकर के जो चलते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, वही सनातनी है। इस चीज को समझिए, हिंदू कोई ऐसी चीज नहीं है जो झूठ मूठ को अपने धर्म में बुरा हो अच्छा उसी पर वो नहीं लगे रहते। वैदिक धर्म को मान करके जी आत्मा भगवान का नित्य दास है, वह नित्य है, सनातन है, इसको मानने वाले जो हिमालय और बिंदु सरोवर के बीच में है, हिमालय का हई और बिंदु सरोवर का दो, इसको कहते हैं हिंदू, वही लोग सनातनी हैं, इसलिए उसको कहा गया है, उनके विचारों को मानने वालों को। अभी देखो हिंदुस्तान का विभाग हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, फिर उधर में बर्मा कट गया, पहले अफगानिस्तान, बेलूचिस्तान, लंका भी भारतवर्ष के अंदर में थे, यहां तक कि इंडोनेशिया, श्याम देश, बर्मा देश सब उसके अंदर में थे, बहुत बड़ा भारी कश्पियन सी, कश्यप ऋषि का स्थान था, वो भी भारतवर्ष के अंदर में था, महाराज अम्बरीश जी, भरत जी, ये सबके वो राजा थे, अर्जुन, यहाँ तक कि अमेरिका में भी गए, ऑस्ट्रेलिया में पार्थ का नाम है, पार्थ वो अर्जुन के नाम पर है, उनका अस्त्रागार था वहां पर, इस तरह बृहत भारत वर्ष था, आजकल जैसा नहीं, 5000 वर्ष बीत गए हैं, इसमें कितना अदल बदल हो जाता है। इसलिए इन विचारों को मानने वाले ही हिंदू हैं।
आप लोग से हम बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं गुरु जी से तो आज तो नहीं हो सकता है, मगर एक शुरू दास जो यहाँ है अगर हो सके तो सराजात आप अभी देख ले, जो सवाल आपसे करना है गुरु जी से तो इसके कॉन्टेक्ट कर लो, तो ये आप ठीक जवाब गुरु जी से जवाब सही बात है।
अभी ये सुनो, अरे बन महाराज जी रहेंगे 3-4 दिन 5 दिन वो फिर उत्तर देंगे।
अच्छा, बन महाराज जी रहेंगे तो उत्तर आप लोग मिल जाएगा।
नमस्कार सभी दोस्तों, राम राम। गुरुदेव मैंने एक सवाल पूछने का, सवाल को कितना है पूछने के लिए, कृष्णा का माता ने दिखाया था भूमि उसके मुंह, और जब युद्ध के समय वो कृष्ण राजा जी कहाँ था उसके माँ के मुंह में या भूमि के ऊपर था?
क्या क्या ओ ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए इनका ये प्रश्न है। अब यहीं पर रहिए ना, थोड़ा सा बैठिए ऊपर ही बैठ। आपका प्रश्न मैं पहले करता हूँ, जब मैंने समझा कि नहीं, मैं इनका ये प्रश्न है कि बाल्यकाल में कृष्ण ने मट्टी खाई और बच्चों ने मैया से उलाहना दिया कि तुम्हारा बेटा मट्टी खाया, तो वो कृष्ण को बुला करके तेने मट्टी खाई, अत नहीं मैया मैंने तो मट्टी नहीं खाई। अच्छा, तो उनका हाथ में मुख में हाथ डाल करके और ऐसे किया छोटा सा मुंह, उसमें देखा विश्व ब्रह्मांड पृथ्वी सब थी। तो ये पूछते हैं हमारे समझ से, जो मिट्टी तो उनके पृथ्वी तो और सारा विश्व तो उनके मुख में था, तो फिर वहां पर कृष्ण कहाँ पर खड़े थे, जो यशोदा मैया कहाँ पर खड़े थे, ये प्रश्न है ना कुछ और है?
प्रश्न मेरा ये है, युद्ध के समय पर,
युद्ध में,
युद्ध के समय पर
महाभारत युद्ध हुआ,
माँ था और माँ के मुंह में कृष्ण था या भारत था?
युद्ध के समय कहा?
कुरुक्षेत्र का,
कुरुक्षेत्र में,
कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय
अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया था,
हाँ, कृष्ण था कहाँ था, माँ के अंदर मुंह में भूमि पर या भूमि के बाहर था?
देखो कृष्ण एक ऐसे हैं अणु से भी अणु और महान से भी महान है। एक तरफ में उनके एक एक लोम कूप में सारा विश्व ब्रह्मांड है, कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड। ये सूरज देखते हो, इस सूरज से भी कोटि कोटि बड़े सूरज हैं, कोटि कोटि पृथ्वी है। ये कृष्ण ने अपने मुख में दिखलाया अर्जुन को, ये क्या है? और साथ ही साथ में एक अद्भुत उनमें चीज है, सारा विश्व उनके मुख में है और सारे विश्व के अंदर में वो हैं। ये भगवान की विशेषता है। दूसरा क्या बतलाया? सारे विश्व के अंदर में तो वो हैं, अणु अणु रूप में सब में हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर में सारे विश्व हो सकते हैं और वही कृष्ण अपनी अद्भुत जोगमाया शक्ति से एक ऐसी अद्भुत दिखलाएंगे जो पृथ्वी पर खड़े हैं उनके सभी लोग वहां पर हैं, ऐसा भी दिखला सकते हैं। यदि एक मदारी सिर काट करके भी और किसी का सिर नहीं काटता है, सुना है आपने, मदारी जो दिखलाता है मैजिशियन, एक मैजिशियन वो मैजिशियन में दिखलाता है किसी आदमी का सिर काट दिया और काट करके बक्से में बंद कर दिया और कहे रामू इधर आ जा और वो नाचता हुआ चला है, ये कैसे? तो कृष्ण जादूगरों के जादूगर हैं, जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाले हैं, वो क्यों नहीं ऐसा दिखला सकते ये सारा विश्व ब्रह्मांड उनके मुख में है और फिर भी पृथ्वी पर खड़े हैं, उनकी मैया है और सभी लोग हैं। कृष्ण में सब कुछ शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, जो नहीं होने का वो भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने विश्व रूप दिखलाया। इसी तरह से जितनी भी लीलाएं होती है उसमें जोग माया काम करती है, सब कुछ दिखला सकते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड का ध्वंस करके फिर नया सृष्टि कर देते हैं, उन्हीं के लिए संभव है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। गौर प्रमाण जय 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 श्री बस अंतिम कीर्तन करो।
अब कुछ कीर्तन होगा।
हाँ
दस एंड्स द क्लास ऑन द 30th of June 2002 in the evening in Rotterdam.